Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो श्रद्धा का मतलब होता है कामनाओं से रहित, काम से रहित, अहंकार से रहित, ममता से रहित, ऐसा जो अंतकरण है। एक बार की बात है, मैं जब बनारस में पढ़ता था, हमारे वेदांत विभागाध्यक्ष थे श्याम नारायण दीक्षित जी नाम के, हमारे गुरुजी थे, तो मैं उनको कभी कभी बीच में प्रश्न करता था, बोलता था। तो एक दिन, मतलब वास्तविक ऐसे गुरुजी मिलते, बड़े भाग्य से मिलते हैं। मुझे एक दिन कहा कि स्वामी जी, आप सन्यासी तो बने हो, आपका सन्यासी होने से तुम ज्ञान के श्रवण करने की अधिकारी तो हो, परंतु ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। क्या कहा? हमने कहा मतलब क्या गुरु जी? ये कहा है संन्यास श्रवणम कुर्यात्, ज्ञान का श्रवण संन्यास से ही, संन्यास श्रवणम कुर्यात्, ये कह करके श्रुति ने ये विधि बना दी है, ज्ञान का श्रवण संन्यास पूर्वक करना चाहिए। तो क्या संन्यासी तो हो गए? केवल संन्यासी होना ही ये नहीं है, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए केवल संन्यास ही पूर्ण विधि नहीं है। कहा कि स्वामी जी, मैं बताऊं आपको सत्य बात, इस ज्ञान को यदि अंदर पचाना है, क्या श्रवण करना दूसरी बात है, परंतु ज्ञान को अंदर उतारना, अंदर स्थिर करना दूसरी बात है। और हमने उनको कहा था कि गुरुजी, हम परीक्षार्थी बनकर के या और कोई डिग्री धारक, डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं हम पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्जन करने के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले कहा था हमने, तो उन्होंने कहा है कि स्वामी जी, वेदांत सच्चा वेदांत सुनना है, वेदांती बनना है, वेदांत को सुनो, ज्ञान को सुनो। हमने कहा गुरु जी, मरेंगे तो फिर कैसा सुनेंगे? कहा कि सुना जाता है ना, मरा भी जाता है और सुना भी जाता है। फिर समझाया मेरे को, मरने का अर्थ होता अहंकार को नष्ट कर करके, अहंकार को बाधित करके, अहंकार का नाश करके, अहंकार है ही नहीं, ऐसा निश्चय मन में करो और फिर वेदांत श्रवण करो, तो देखो आनंद होता है कि नहीं होता है। सही बात है उनकी। कहने का तात्पर्य है कि ये अहंकार समाप्त होता है तो आपका, आपके अंदर श्रद्धा निर्माण होती है, श्रद्धा, और श्रद्धा निर्माण होती है तो सावधानता भी आ जाती है। बिना श्रद्धा की सावधानता नहीं है, समझना। सभ्यता में सावधानता नहीं होती है, सावधानता का मतलब होता है चित्त एकाग्रता, जिसको निर्विषयम मन, ये मन निर्विषय हो जाता है, और जब मन निर्विषय हो जाता है तो चित्त में एकाग्रता आ जाती है। क्या आ जाती है? एकाग्रता आती है, और ये एकाग्रता ज्ञान को पकड़ करके रखती है। ये ध्यान रखो क्या करती है। मैं तो कहावते नड़ी फुंकले सोनारे इकड़ून तिकड़ून गेले वारे मराठी में कहते इस कान से सोना इन कान से छोड़ दिया। तीन प्रकार के श्रोता महात्मा लोग मजाक से बताते हैं। एक श्रोता ही छोड़ देता है, एक श्रोता इस कान से सुनता है और इस मुख से निकाल देता है, और एक श्रोता है जो सुनता है वो अंदर ही डालता है, बाहर निकलने नहीं देता है उसको। अब ये तीन में से उत्तम श्रोता कौन है? इसलिए तो श्रोताओं में भी सुनने में भी तीन प्रकार का भेद होता है। ध्यान रखो, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। पहले कभी की याद नहीं कहा कि महाराज एक कैसा महात्मा कथा बोलता है, उसका गला आवाज भी ठीक नहीं करता है, और शब्द भी बराबर नहीं बोलता है कुछ, ताकि कैसा कथा करता है। अब मैं क्या बोलूं उसको, नहीं कथा करता है ना भाई। हाँ नहीं कथा करता है। हमने कहा तू जैसा चाहता है वैसा नहीं करता है, नहीं करता होगा। कहा कि बिल्कुल नहीं महाराज, उसको उत्तर मैंने बड़ा कड़वा दिया, वो नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य है कि ये दोष कथा का है या सुनने का है? हा? सुनने का। हमने कहा तुम ना भगत हो, ना तुम श्रोता हो, और ना तुम सोता हो, तुम तो सरोता हो। सरोता, सरोता जानते हो, वो कतरने वाला, कतरने वाला। हमने उसको एक तो कैसी कथा अच्छी लगेगी, कहने का तात्पर्य है ऐसा नहीं है, समझना। इसलिए पहले श्रद्धा, दूसरी सावधानता और तीसरी तत्परता, तत्पर रहना चाहिए। एक शब्द भी इधर का उधर नहीं होने देना चाहिए। जैसा टेप रिकॉर्ड होता है ना, टेप रिकॉर्ड में गलत शब्द हो चाहे अच्छा शब्द हो, वो कैच करता है कि नहीं, उसको अपने अंदर रखता है कि नहीं, धारण करता है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारा अंतकरण वैसा ही होना चाहिए। अच्छा आप वो देखते हो, उस जो पहले सीढ़ियां चलती थी वो टेप रहता था कि नहीं, वो टेप कैसा रहता था? बिल्कुल शुद्ध रहता था, उसके अंदर कुछ भी लिखावट नहीं रहती थी। तभी तो तुम जो भी बोले उसको अपने अंदर धारण कर सकता था, और उसके अंदर पहले ही कुछ भरा हुआ होता तो वो कर सकता है? ऐसा ही ज्ञान को धारण करना है तो अंतकरण को आपको ऐसा ही बनाना होगा। श्रद्धा से युक्त, सावधानता से युक्त, तत्परता से युक्त। तत्परता अर्थात इंद्रियों का संयम, संयत इंद्रियता अर्थात इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, निग्रह। समझना, अर्थात ये नहीं है कि इंद्रियों को बांध करके रखना रस्सी से या किसी से। इसका नाम निग्रह है कि नहीं? इसका नाम निग्रह नहीं है। क्या निग्रह का मतलब क्या होता है? इंद्रियां निग्रहित कब होती है? बांधने से, आसन लगाने से या नाक दबाने से इंद्रियों का निग्रह नहीं होता है, निरोध हो सकता है। निरोध में और निग्रह में बड़ा अंतर है। निग्रह के लिए पहले निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए। निश्चय के बिना निग्रह नहीं होता है। निरोध का अर्थ तो होता है प्रतिबंध करना, बांधना उसको। जैसा नदी पर क्या कर दिया, पत्थरों का बांध बांध दिया, तो पानी का निरोध हो गया कि निग्रह हो गया? निरोध हो गया, निग्रह नहीं हुआ। ऐसा ही हमने आग बंद कर दिया, कान में रुईटा डाल दिए, नाक हाथ से दबा दिया, मुंह बंद कर दिया, तो क्या निग्रह हो गया? इसका नाम निग्रह नहीं है। निग्रह का मतलब पहला निश्चय करो और निश्चय करके तत्व का ग्रहण करना है। क्या? और निश्चय के लिए पहले नियम होना चाहिए। हमारे जीवन और जीवन में इंद्रियों को नियमित बनाओ, ऐसा नियमित करो कि वो इंद्रियां ही तुम्हें करने के लिए मजबूर करे। एक बार की घटना बताते हैं तुकाराम के जीवन की। तुकाराम जी एक दिन ये करने के लिए, टट्टी करने के लिए, पहले मतलब घर में तो नहीं होते थे, जंगल में जाना पड़ता था, और उनका देहू गांव तो गांव था, छोटा सा कस्बा भी नहीं, गांव। तो गांव के बाहर वो लैट्रिन करने के लिए गए, वहां लोटा रखा और लैट्रिन कर रहे थे। उसी समय एक पंडित जी, कर्मकांडी पंडित, वहां से देख रहे जा रहे थे। तो तुकाराम लाइटिंग भी कर रहे हैं और विठल 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 जब भी चल रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसा ही आदमी है, ये लाइटिंग कर रहा है, भगवान का नामोच्चारण भजन भी कर रहा है, तो बड़ा गंदा आदमी है। वो रुक गया। फिर उसके बाद जब उठा तो तुकाराम को बहुत डांट दिया। तो तुकाराम ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, माझी मद झाली अनावर वाचा छंदया नामाचा घेतला से, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी वाणी मेरे को इतनी अनावर हो गई कि मैं उस वाणी को रुक नहीं सकता हूं, इसके अंदर तो परमात्मा के नाम का छंद लगा है। संत ज्ञानेश्वर जी भी कहते हैं कि आनी का दूसरे मजना ही आता, नेमोलिया चिंता पासोनिया, पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मनी, जागृति स्वप्नी पांडुरंग, पड़िले वलन इंद्रिया सकला, भाव तो निराला नाही दुजा। ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा सुंदर इसमें बताया है, अर्थात इंद्रियों की वो ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि उसके अलावा वो दूसरे को ग्रहण ही न करे। अनेक दूसरे मजनाई आता, नेमोलिया चिंता पासोनिया, अर्थात चित्त से लेकर के इंद्रियों तक नियमित बनाओ। नियमित क्या करना है? ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि चित्त से लेकर के चित्त, बुद्धि, मन, इंद्रिया, ये सब तुम्हारा नियमित होना चाहिए। नियमित पहला नियम होना चाहिए, फिर भाव तो निराला नहीं दूजा, फिर दूसरा भाव कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा। क्या? आपका भाव, आपके भाव में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अर्थात चित्त एक में ही स्थिर हो जाए, उसका नाम निग्रह है। इंद्रियों को बांधने का नाम निग्रह नहीं है। निरोध हो सकता है या और कुछ प्रतिबंध हो सकता है, परंतु निग्रह का मतलब पहला जीवन में नियम लाओ, नियम से फिर निग्रह लाओ, निश्चय लाओ, नियम से निश्चय और निश्चय से निग्रह, निग्रह से निष्ठा। क्या होता है? निग्रह के बिना निष्ठा नहीं है और निष्ठा के बिना स्थिति नहीं है, अस्थिति के बिना गति नहीं है। तो इसलिए आपके जीवन में क्या होना चाहिए? तो निग्रह होना चाहिए, निष्ठा, सावधानता होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए। तब ज्ञान क्या होगा? स्थिर होगा। और ये तुम्हें करना पड़ेगा। श्रद्धा को निर्माण करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान को यदि स्थिर करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल श्रवण मात्र से ही मुक्त नहीं हो जाओगे। श्रवण के बाद ज्ञान को स्थिर करने के लिए और तद्रूप बनने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ये मोक्ष रूप पुरुषार्थ होगा। यहां कुर्वन्येवे कर्माणि, ये चल रहा है ना, क्या करना है? श्रुति किसको कह रही है? कुर्वन कर्म करने के लिए कह रही है, परंतु कौन से कर्म के लिए, यह प्रश्न होता है कि नहीं? जो ना समझ लोग होते हैं ना, वो कहते महाराज आपके वेदों ने ही तो आज्ञा दी है कि कर्म करना चाहिए, कर्म को छोड़ना तो दोष हो जाएगा। नहीं, कर्म छोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं कहते, परंतु श्रुति कर्म करने का आदेश देती है, परंतु कैसा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और किस लिए कर्म करना चाहिए, ये प्रश्न होते हैं कि नहीं? नित्य नैमित्तिक कर्म और अब सत्कर्म करना है कि असत्कर्म करना है। कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, सत्कर्म और असत्कर्म, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, विधि कर्म निषिद्ध कर्म, कई प्रकार के बताए। यहां कर्म कौन सा करने के लिए स्तुति करती है, कौन सा कर्म करती भी जिन्हें की इच्छा करे, ये विचार करना है कि नहीं? ये दूसरा भौतिक कर्म की बात श्रुति नहीं कहती है, ये तो तुम्हारा प्रारब्ध जन्य कर्म है। ये जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये जो सब कर्म है ना, या लेन देन का व्यवहार कर रहे हो, पद प्रतिष्ठा को हो पा रहे हो, ये सब कर्म जो है ये करने की नहीं जरूरत, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से हो रहा है और वो होगा। क्या तुम्हारा जो प्रारब्ध है, जन्म जन्मांतरों का जो कर्म है, वो कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये भोगात्मक कर्म है। क्या ये प्रारब्ध का भोग है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो श्रुति कौन से कर्म को हो करने के लिए कह रही है, इसका विचार करना पड़ेगा कि नहीं? श्रुति उन कर्म को करने के लिए कह रही है कि जिन कर्मों से तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो, क्या जिन कर्मों से तुम मुक्त हो जाओ, वो कर्म करने के लिए कह रही है। और वो कर्म करने का नाम ही क्या है? पुरुषार्थ है, मोक्ष रूप पुरुषार्थ। या श्रुति मोक्ष रूप पुरुषार्थ करने के लिए कह रही है, भोग रूप पुरुषार्थ, काम रूप पुरुषार्थ को नहीं, अर्थ रूप पुरुषार्थ को नहीं, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से है। प्रारब्ध से क्या? तुम्हारे प्रारब्ध में जो भोग है वो हो भोगना पड़ेगा, सुखात्मक दुखात्मक जो भी है, परंतु यहां पुरुषार्थ करना है तो कौन सा पुरुषार्थ? परम पुरुषार्थ। श्रुति जो बताती है वो परम पुरुषार्थ की बात करती है। शास्त्र जो करने के लिए कहता है या पुराण जो करने के लिए कहता है, वो गौण पुरुषार्थ, धर्म रूप पुरुषार्थ, कोई काम रूप पुरुषार्थ है, कोई अर्थ रूप पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ संसार की ओर ले जाने वाले हैं। श्रुति जीव को संसार की ओर नहीं भेजती है, नहीं तो श्रुति क्यों कहती है असतो मा सद्गमय, मृत्यु वास्तविक हितैषी है, इसलिए तुम्हें सत की ओर प्रवृत्त करती है, असत की ओर कभी नहीं करेगी। जिस कर्म से तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो क्या मनन रूप कर्म करो। इसलिए एक श्लोक में आता है कि ज्ञानंच क्या अभ्यास का मतलब बार बार चिंतन, अभ्यास करोगे तो वो परमात्मा का विषय समाधा तुम न शक्नोषि मै स्थिरम अभ्यासे न त्याग पूर्वक अभ्यास। क्या त्याग पूर्वक भोग, प्रश्न होता है कि लिपायमान न हो, जो कर्म तुम्हारा प्रारब्ध न बने, जो कर्म सुखात्मक या दुखात्मक न बने, पापात्मक पुण्यात्मक न बने, वो कर्म करने के लिए वो कर्म कुछ न कुछ तो निर्माण करेगा। सत्कर्म करो या असत्कर्म करो, कुछ न कुछ तो वो फल दे। तो ऐसी है कि कर्म भी हो और फल निर्माण न हो, ऐसी भी एक युक्ति है। क्या ऐसी भी एक युक्ति है कि कर्म बने परंतु तुम्हें यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमाल लोकान न हंती न निबद्धती। क्या भगवान ने कहा है कि ऐसा कर्म करो यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते, कि जिस कर्म से अहंकार उत्पन्न हो ऐसा कर्म नहीं, कर्म बाधक, कर्म फलद्रूप, कर्म संस्कार तब निर्माण करता है जिस कर्म से अहंकार की निष्पत्ति होती है। जो कर्म अहंकारात्मक होता है, क्या जो कर्म अहंकारात्मक होता है वो कर्म तुम्हारे अंदर संस्कार निर्माण करेगा, वो कर्म तुम्हारे अंदर सुखात्मक दुखात्मक पापात्मक पुण्यात्मक वो तुम्हारे अंदर दोष निर्माण करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि यस्य नाहम कृतो भाव, जिस कर्म में अहम कृत हो मैंने किया ये नहीं होना चाहिए। नाहम यस्य नाहम कृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसमें बुद्धि लिंपायमान नहीं होती है, बुद्धि जिसको पकड़ति नहीं है और जो बुद्धि को नहीं पकड़ सकता है। बुद्धि यस्य न लिप्यते अर्थात जिसके साथ बुद्धि लिंपायमान नहीं होती है या जो बुद्धि के साथ लिंपायमान नहीं होता है ऐसा कर्म करो, अहंकार को उत्पन्न करने वाला कर्म नहीं, वो पापात्मक पुण्यात्मक होता है। क्या वो पुण्यात्मक पापात्मक हो सकता है परंतु जिसमें अहंकार ही नहीं, इसलिए तो भगवान ने कहा हत्वापि सीमान लोकान न हंती न निबद्धते। जो कर्म बुद्धि के साथ लिंपायमान नहीं होता है, जिस कर्म में अहंकार नहीं होता है अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से रहित कर्म, फिर ऐसा ये होने के बाद फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान कहते हत्वापि सीमान लोकान, इस संपूर्ण लोक को भी उसने यदि नष्ट कर दिया तब भी ना वो मारने वाला है और ना बंध बंधन से पाप पुण्य से बंधने वाला है, उसको पाप पुण्य भी नहीं होता है। क्या पाप पुण्य किसको होता है? अहम को होता है कि किसको होता? आत्मा को होगा क्या? इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्र कर्मकृत। कर्म में अकर्म पर दृष्टि होना चाहिए। कर्मण्य कर्मय पश्येत कर्मणि अकर्म पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो ज्ञानी है। ज्ञानी मनुष्यों में वही ज्ञानी है। कर्म का त्याग, त्याग की बात यहां भगवान नहीं करते हैं। कर्म त्यागने वाला ज्ञानी ये नहीं कहते हैं, कर्म करने वाला ही ज्ञानी है। परंतु कैसा कर्म करने वाला ज्ञानी है? कर्म में जो अकर्म को देखता है, अर्थात अकर्म स्वरूप जो परमात्मा है, जो आत्मा है। क्योंकि कर्म का झरना कहां से निकल रहा है? कर्म में वास्तविक क्या है वहां जाना है, वहां पर दृष्टि होना चाहिए। गंगा गोमुख से निकली है तो गंगा को देखना, गंगा में स्नान करना चाहिए, परंतु दृष्टि गोमुख से निकली हुई गंगा पर होना चाहिए। क्या इसी प्रकार से प्रत्येक उस अकर्म स्वरूप आत्मा को देखोगे तो कर्म कर्म नहीं बनेगा। फिर तुम्हारे अंदर अहंकार निर्माण होगा क्या? नहीं, अहंकार निर्माण नहीं होगा, निरहंकारात्मक होगा। इसलिए भगवान ने कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की आकांक्षा मत कर, कर्म कर परंतु फल की आकांक्षा मत कर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फल ही तो बाधक होता है। क्या फल ही बाधक होता है? इसलिए ऐसा फलात्मक कर्म करने का श्रुति निषेध करती है। इसलिए निष्काम कर्म कहती है, निष्काम कर्म करो। ये निष्काम कर्म ही करने के लिए कहती है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। अर्थात ज्ञानात्मक कर्म करो, निष्फलात्मक अर्थात फल की कामना से कर्म मत करो, निष्काम होकर के कर्म करो। निष्काम का मतलब अहंकार से रहित, ममता से रहित होकर के कर्म करो। और यही कर्म करोगे तो ये तुम्हारे अंतकरण को शुद्ध बना देगा, श्रद्धायुक्त बना देगा, तत्पर बना देगा, सावधान बना देगा, और उसमें ज्ञान स्थिर होगा। तो ज्ञान को स्थिर करने के लिए, ज्ञान को हो पचाने के लिए ज्ञानंच अभ्यासात् पाच्यते। ज्ञान ज्ञान के अभ्यास से ही ज्ञान को पचाया जाता है। अभ्यासात् पक्व विज्ञानम्, उस अभ्यास से ही ज्ञान पक जाता है। और पका हुआ ज्ञान ही कैवल्यम लभते नरः, उस पके हुए ज्ञान से ही ये मनुष्य कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। ये कर्म जो है वो उस मुक्ति का भी ये साधन है, परंतु बिना अभ्यास के बिना नहीं। समझना, इसलिए अभ्यास से ही इसको पहले हजम करो, बार बार श्रवण करो, ये अभ्यास है। और ये श्रवण से ज्ञान को हो अंदर पाचेत, पचन करो, अंदर डालो, और फिर इस अभ्यास से उसको पकाओ। पकाने का मतलब होता है निर्दिध्यासन करना। समझे, निर्दिध्यासन का अर्थ ही होता है पका। जैसा वृक्ष से फल तोड़कर लाते हैं घर में और फिर उसको क्या करते हैं, पकाते हैं कि नहीं पकाते, फिर बाजार में लाते, मधुर बनता है, पक्व हो जाता है। तो ये ज्ञान मधुर बन जाता है, अमृत बन जाता है, और वो अमृत उसको मुक्त कर देता है। ये मुक्ति का साधन के लिए ही यहां बता रहे, ये साधन के रूप में है। और यही इसी की इच्छा करते हुए जियो तो जीवन आनंदमय होगा। ये इसका क्या है तात्पर्य, आगे का जो उत्तरार्थ है उस पर थोड़ा सा कल विचार करेंगे। कल का दिन है हमारा, परसों से तो भागवत का प्रारंभ होगा, इसलिए कल ये उत्तरार्धेश का कल बताएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज का अर्थ हुआ चतुर्दशी सोमवार दिनांक 28 नवंबर।